पृष्ठ 33, 10। धूमिल की कविता में उपमान प्रतीक बिंब। नई कविता में पुराने उपमान प्रतीक और बिंब पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए गए हैं, किंतु अभिव्यक्ति के शिल्प को प्रभावी बनाने में ये वह साधन है जो रचना के कथ्य को मार्मिक और अस्थायी बनाते हैं। समय के अनुरूप नए कवि की दृष्टि बदलने पर भी अभिव्यक्ति में प्रयुक्त विधान का महत्व कम नहीं हुआ है। नए कवि की व्यंग्यमयी मुद्रा और समसामयिक परिवेश में अपनी बात को धारदार रूप में प्रस्तुत करने के लिए मुक्तिबोध, धूमिल जैसे कवियों ने इन साधनों का भरपूर उपयोग किया है। उनके कथन में जो नयापन और ताजगी देखने को मिलती है, उनमें भाषा के इन सशक्त माध्यमों का पूरा पूरा हाथ रहा है। कथ्य कथ्यांश या उपमेय की जिस वस्तु अस्थित या गतिमान से उपमा दी जाती है, उसे काव्य शास्त्रीय शब्दावली में उपमान कहते हैं। साहित्य इतिहास के विकास के साथ ही उपमा का स्वरूप और उपमान चयन का क्षेत्र भी बदलता रहता है, लेकिन यह निर्विवाद है कि अभिव्यक्ति के अलंकरण में इन भाषा साधनों का उपयोग अधुनतम कवि तक करते रहे हैं। यह अलग बात है कि इनमें उपमान अपने विभिन्न नामों से अभिहित होता रहा है, जैसे अप्रस्तुत, अप्राकृत, अप्रासंगिक अथवा अप्रकारणिक आदि, लेकिन उपमान नाम सर्वाधिक प्रचलित रहा है। इस शब्द के साथ योजना या विधान शब्द का प्रयोग कवि कौशल का द्योतक रहा है। यद्यपि धूमिल ने उपमान प्रतीक आदि के आधार पर कविता की स्वीकृति का तिरस्कार किया है, क्योंकि मात्र इनके होने से कविता की सही परख संभव नहीं है। तभी तो वे कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मैं भाषा के जबड़े में कैंसर की गांठ हूँ। ब्रैकेट बंद। सुदामा पांडे, संयुक्त मोर्चा, पृष्ठ 33। आप मुस्कुराते हो, बढ़िया उपमा है, अच्छा प्रतीक है। हे, तीख है, तीख है। और मैं समझता हूँ कि आपके मुंह से जितनी तारीफ है, उससे अधिक पीक है। संसद से, कवि 1970, पृष्ठ 64। धूमिल की कविता पढ़ते हुए यह बात स्पष्टतः अनुभव में आती है कि रचनाकार अप्रस्तुत विधान के लिए किंचित भी सायास प्रयत्नशील नहीं हुआ है। अनायास ही अप्रस्तुत रूप में उपमान के रूप में वस्तु स्थिति या पक्ष प्रस्तुत किए हैं। वह परिस्थिति को, उसकी विसंगति और विद्रूपता को, उसकी भयावहता और क्रूरता को अधिक व्यंजक और प्रभावी बनाकर प्रस्तुत करते हैं। एक उदाहरण देखिए, पीले अंधकार की अनिवार्य भयावहता को पागल औरत के गाभिन पेट की तरह बताया गया है। देखिए पृष्ठ 12। और मातृभाषा के विवश अपमान को महारी की विवशता से उपमित किया है। तुम चुप रहोगे और लज्जा के उस निरर्थक गूंगेपन से सहोगे, यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा, पृष्ठ 34, उस महारी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है, पृष्ठ 13 से। इसी प्रकार सड़कों पर होने एवं कमरे के एकांत में होने की स्थिति, जूतों के अंदर पैरों के सड़कों पर होने एवं कमरों के एकांत में जूते से निकाले गए पांव की तरह बताई गई है। इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सड़कों पर होता हूँ, बहसों में होता हूँ, रह रह कर चाहता हूँ, लेकिन हर बार वापस घर लौट कर कमरे के एकांत में जूते से निकाले गए पांव सा महकता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा बंद, पृष्ठ 23। परिवेश की विवश स्थितियों में व्यक्ति का गुस्सा चढ़ी नदी के खड़े काठ जैसा और चरित्र अंग्रेजी के आठ जैसा बताया गया है। इन्वर्टेड कॉमा, मेरा गुस्सा जनमत की चढ़ी हुई नदी में एक सड़ा हुआ काठ है। लंदन और न्यूयॉर्क के घुंडीदार तस्मों से डमरू की तरह बजता हुआ मेरा चरित्र अंग्रेजी का आठ है। इन्वर्टेड कॉमा बंद, पृष्ठ 26। इस प्रकार पाली पोसी गई घास को हरा डर कहने में जो व्यंजना है, पृष्ठ 28, वह घास के मालिकों की मानसिकता को बताने में समर्थ है। और इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, जैसे आदमी को दरिद्र परिवार की 20 साल बिटिया कहना, पृष्ठ 31, मकानों के पीछे के मकानों की किवाड़ों से झांकती दृष्टि को चाकू कहना, मुस्कुराते हुए आदमी का उनमें नमक के ढेले सा घुल जाना, पृष्ठ 51, खोखली कविता को हमलावरों के डर से खाली किए गए शहर की तरह खाली बताना, पृष्ठ 61, बीमार बच्चे का फटे दूध सा रोना, पृष्ठ 64, सुविधा परस्त लोगों के दिमाग में राजनीति को ऊसर में थूहर की तरह उगना, पृष्ठ 97, और राजनीति के मंच पर झंडों का रंग गिरगिट की तरह बदलते रहना आदि उदाहरण है। कवि धूमिल के आयतनज अप्रस्तुत विधान की क्षमता को बाखूबी मुखर कर रहे हैं। एक स्थान पर संसद को तेली की घानी, पृष्ठ 127, बताया गया है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। समीक्षा संग्रह में जहाँ तक रचनाकार के प्रतीक चयन और उनके द्वारा अर्थ व्यंजना कराने की बात है, उस दृष्टि से भी रचनाकार की प्रयोगधर्मिता में मौलिकता एवं ताजगी का उल्लेख करना समीचीन है। पृष्ठ 35, वास्तव में प्रतीक निहित जटिल अर्थों को व्यंजना के माध्यम से अभिव्यंजित करने के साधन हैं। रचना में इन प्रतीक का प्रयोग तभी सार्थक और प्रभावी माना जाता है जबकि इनकी जमीन सामाजिक अनुभवों में परिव्याप्त हो। कवि धूमिल इस तथ्य सत्य से भली प्रकार अवगत थे। वह जानते थे कि प्रतीक संवेग को तभी शक्ति और उत्तेजना दे पाते हैं जबकि उनकी जड़ें समाज के समूह अनुभवों में समाई हों। व्यक्तिगत आधार पर तो हजारों प्रतीक खड़े किए जा सकते हैं, किंतु प्रतीक विधान का यथार्थ पर आधारित होना तथा पाठक श्रोता के यथार्थ बोध में सहायक होना भी आवश्यक है। देखिए नए साहित्य का सौंदर्य, शास्त्र मुक्तिबोध, पृष्ठ 129। धूमिल के प्रस्तुत समीक्षा काव्य संग्रह में प्रयुक्त विभिन्न प्रतीक सामाजिक स्थितियों के विभिन्न स्तरों और परिवेश से जुड़े हुए हैं। प्रयुक्त प्रतीक किसी प्रकार भी दुर्बोध नहीं जान पड़ते हैं। वैसे इस सत्य से भी अवगत रहना आवश्यक है कि धूमिल वर्तमान विसंगत स्थितियों की जटिलताओं के बीच में जी रहे थे। इन्हीं जटिलताओं के बीच से उन्हें अपनी अभिव्यक्ति के साधन उपलब्ध करने थे। वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विसंगतियों, यातनाओं के बीच जीने वाले कवि रचनाकार से इतनी अपेक्षा तो बनी ही रहती है कि उसका अप्रस्तुत विधान, प्रतीक योजना, अर्थ उद्घाटन के धरातल पर थोड़ी बहुत तो जटिल होगी ही। धूमिल के प्रस्तुत संग्रह में प्रमुख रूप से जिन प्रतीकों का प्रयोग हुआ है उनमें नगर, शहर, जंगल, हरियाली, घास, पेड़, खेत, बसंत, ओस, बिंदु, मौसम, चेहरा, आदमी, चालाक, आदमी, औरत, मैदान, मकान, कमरा, अंधी, ढलान, लालटेन, कील, आंधी, अंधकार, रात, रोशनी, सड़क, संसद, दलदल, अधमरा, पशु, भूख, भीड़, कुत्ता, गाय, तुंदियल, खून, नदियां, झंडा, कारगर, हिंदुस्तान आदि प्रतीक अपने अपने मंतव्यों को यथास्थान अभिव्यंजित करने में सफल हुए हैं। इनमें भी जो कवि को अधिक प्रिय रहे हैं वह हैं जंगल, हरियाली, अंधकार, सड़क, भूख, कुत्ता, रात, लालटेन और आदमी।